الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، آج ما شاء الله آن لائن بہت سارے طلبہ موجود ہیں اور آن لائن کا ریزلٹ کی اناؤنسمنٹ مولانا نعیم اقبال صاحب نے کی تھی، اس لیے بہت سارے لوگ ماشاء اللہ آن لائن موجود ہیں اور بہت سارے لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ مراقبہ ہو رہا تھا، تو پوچھ بھی رہے تھے کہ اتنی دیر خاموشی کیوں ہوئی ہے. تو ہر روز صبح یہاں ہدایہ اکیڈمی میں ذکر اذکار کی محفل ہوتی ہے، اس کے پاس تھوڑی سی نصیحت ہوتی ہے، اور آج ساتھ ساتھ اناؤنسمنٹ یہ بھی کیا گیا ہے کہ صبح 7 بجے آن لائن اسٹوڈنٹس کا ریزلٹ کی اناؤنسمنٹ ہے. تو ہر روز کی ترتیب کے مطابق اس مراقبے کے بعد، اس ذکر کے بعد چند منٹ کے لیے کچھ نہ کچھ نصیحت کی گفتگو ہوتی ہے، تو اس معمول کو جاری رکھا جائے گا اور پھر انشاءاللہ آپ کی ریزلٹ کی اناؤنسمنٹ ہوگی. یوں سمجھیں کہ مولانا نعیم اقبال صاحب نے آپ کو ٹرک کر کے، اور یہ ٹرک کر کے اور آپ کو اس زوم میں، اس مراقبے کی محفل میں ڈال دیا ہے. تو چند منٹ تھوڑا سا انتظار کریں گے، چند باتیں یہ عاجز کرے گا اور اس کے بعد انشاءاللہ یہ ریزلٹ کی اناؤنسمنٹ ہوگی. تو آج کی دو باتیں، الحمدللہ وکفیٰ والسلام علی عباده الذین اصطفیٰ، اما بعد، پچھلی چند مجالس میں ہم نے اس بات کو ڈسکس کیا کہ اصلاح کا ایک نسخہ جو تمام مشائخ کے نزدیک معتبر ہے وہ یہ ہے کہ 4 چیزوں میں کمی کرنا: قلت طعام، قلت کلام، قلت منام، اور قلت اختلاط مع الانام. یعنی کھانے پینے میں کمی کرنا، گفتگو میں کمی کرنا، نیند میں کچھ کمی کرنا، اور لوگوں سے میل جول میں کمی کرنا. بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو نسخہ ہے یہ سالکین طریقت کے لیے، یعنی جو اصلاح کے لیے مشائخ کی خدمت میں آتے ہیں یہ ان کے لیے ہے. مگر اگر قرآن اور حدیث کو دیکھا جائے تو یہ نسخہ ہر مسلمان کے لیے، ہر مسلمان کے لیے ان چیزوں کو اختیار کرنے سے رجوع الی اللہ، اللہ کی طرف توجہ، اللہ کی طرف میلان ہر مسلمان کا بڑھتا ہے. تو یہ نسخہ صرف اصلاحی تعلق رکھنے والے سالکین کے لیے نہیں، ہر مسلمان کے لیے. ان 4 میں سے 3 چیزوں پہ ہم پچھلی چند مجالس میں کافی تفصیل سے گفتگو کر چکے. تو قلت کلام، یعنی گفتگو میں کمی کرنا، قلت طعام، کھانے پینے میں کمی کرنا، اور قلت منام، یعنی نیند کے اوپر بھی ہم نے پچھلی 2-3 مجالس سے گفتگو کی. جو ایکسیسو نیند ہوتی ہے یہ بھی انسان کو اللہ سے دور کرنے والی چیز، اصلاح میں ایک رکاوٹ بننے والی چیز ہے. پچھلی 1-2 مجلس میں ہم نے یہ بھی باور کروایا کہ زیادہ سونا جو ہے یہ ایک پسندیدہ چیز نہیں، مگر زیادہ سونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کم، اتنا کم سویا جائے انسان اپنے پورے دن کے معمولات کو، پورے دن کی ذمہ داریوں کو پورا نہ کر سکے. سونے میں کمی کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان جلدی سوئے اور اتنا جلدی اٹھے کہ تہجد اور فجر کی نمازیں اس کی قضا نہ ہو. پھر ہم نے یہ بھی عرض کیا کہ زیادہ سونے والے 2 قسم کے لوگ ہیں، एक है जो रात को वक्त पे तो सोते हैं मगर आंख खुलती नहीं है फजर पे, तो वो भी बातनी तौर पे एक बीमारी है। मगर एक वो शख्स होता है जो रात भर जागता भी है और बहुत देर से सोता है, और कई मर्तबा फजर भी कजा करता है और कई मर्तबा जोहर भी कजा करता है। और सिर्फ ये नहीं कि नमाजें कजा होती है, ये भी बहुत बड़ा नुकसान, दुनियावी एतबार से भी जो दिन भर सो रहा है वो तो किसी काम के काबिल नहीं रहता। और कल की मजलिस में हमने ज्यादा सोने के बड़े नुकसानात बयान किए, और उसमें से एक नुकसान तो यही है कि नमाजों का कजा होना, एक नुकसान यह है कि इंसान किसी काम के काबिल नहीं रहता। तीसरा नुकसान हमने कल की मजलिस में ये बताया कि ऐसे बंदे को शर्मिंदगी रहती है, यानी पूरा जहान जिस वक्त में उठावा होता है उस वक्त में उसके साथ किसी काम की कोऑर्डिनेशन नहीं हो सकती है। तो कोई अगर उसे कहेगा कि फलां काम के लिए आप मुझसे सुबह 11 बजे या 12 बजे मिल रहे हैं, तो ये तो उसकी ना नींद का वक्त होता है, तो उसे कोई ना कोई उजर, कोई ना कोई बहाना करना पड़ेगा। तो ऐसा बंदा कॉन्स्टेंटली एक शर्मिंदगी की हालत में होता है। और एक और नुकसान भी हमने ये ज्यादा सोने का बयान किया कि जिस बंदे की आदत पक्की हो जाती है कि इसने सुबह से लेकर शाम तक सोना है, फिर ऐसा शख्स जो है वो चाहता है कि मेरा किसी से कोई ताल्लुक ना हो ताकि मैं अपनी नींद पूरी करूं, ताकि कोई मुझे छेड़े ना, तो वो वैसे भी ताल्लुकात में भी कमजोर हो जाता है, दूसरों के साथ ताल्लुकात निभा भी नहीं पाता। आज की इस मजलिस में इस इस्लाह के नुस्खे का जो चौथा हिस्सा है, किल्लत इख्तिलात माल अना, लोगों से मेल जोल में कमी, इस पे गुफ्तगू करने का इरादा। लोगों से मेल जोल में जो कमी करना है, इसकी एक बड़ी वजह है, और वो ये है कि किसी भी मकसद को हासिल करने के लिए इंसान को फोकस रहना जरूरी है। जिसको कॉलेज की डिग्री हासिल करनी होती है, उसको कहा जाता है कि जी 4 साल है, इस 4 साल में पूरी तवज्जो अब आप अपनी पढ़ाई पर रखें और दूसरे कामों को पीछे रख दें, और ये जो पढ़ने का काम है इसकी तरफ तवज्जो कीजिए। जो हिफ्ज करता है कुरान पाक, उसको भी यही कहा जाता है कि जी थोड़ी सी तवज्जो आप इसी तरफ करें, बाकी और कामों से अपनी तवज्जो उठा। इसी तरह जो शख्स बातिन की इस्लाह के लिए मशायख के पास हाजिर होता है, उसको भी यही कहा जाता है कि कुछ अरसे के लिए, जब तक कि इंसान की तवज्जो अल्लाह की तरफ ना बन जाए, जब तक कि इबादत आसान और पाबंदी के साथ नसीब ना हो जाए, जब तक कि ये गुनाह ना छूट जाए, जब तक कि जिक्र की आदत ना बन जाए, उस कुछ वक्त के लिए अपनी फोकस जो है वो इस्लाह की तरफ, मामूलात की तरफ इंसान रखे और डिस्ट्रैक्शन से बचे। इस डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए उसको कहा जाता है कि जी इख्तिलात माल अनाम से बचे, लोगों से मेल जोल में कमी करते। इसकी एक मिसाल दी जाती है कि चाय के अंदर अगर चीनी इंसान डालता है, तो चीनी डालने के बाद चाय जो है वो मीठी हो जाती है। अब चाय एक मरतबा मीठी हो गई अब उसके अंदर चीनी डालने की जरूरत नहीं, अब आप उसको किसी भी कमरे में ले जाएं, उस चाय को आप गाड़ी में अपने साथ ले जाएं, ड्राइव करना शुरू कर दें, चाय मीठी ही रहेगी। तो कुछ वक्त आपको चाय को मीठा करने में लगता है कि जितनी देर में आप चाय में चीनी डाल लें, उसको मिला लें, एक बार तो वो मीठी हो गई तो फिर वो मीठी है। इसी तरह इंसान कुछ वक्त के लिए इख्तलात माल बना करता है, लोगों से मेल जोल में कमी करता है ताकि उसकी तवज्जो अल्लाह की तरफ, आमाल की तरफ, गुनाह से बचने की तरफ पूरी फोकस रहे। और एक मरतबा ये नेमतें नसीब हो जाती हैं तो अब उसकी तबीयत के अंदर ये चीज आ गई, तो अब फिर वो जहां कहीं भी जाएगा वो आमाल भी करेगा, वो गुनाह से भी बचेगा। तो कुछ वक्त के लिए इख्तिलात माल अनाम, ये मशायख ने जरूरी समझा। इसका ये मतलब नहीं है कि इंसान ये कहे कि जी इख्तलात माल अनाम की सूरत हाल में हूं तो जो मेरी जिम्मेदारियां उससे भी जान छुड़ाऊं, वालदेन से भी मुलाकात नहीं कर रहा, बीवी बच्चों से भी मुलाकात नहीं कर रहा, या जो काम कारोबार जो करता है उसमें लोगों से मिलना उसने छोड़ दिया, तो ऐसा नहीं है। बल्कि जो जिम्मेदारियां हैं वो जिम्मेदारियां तो निभानी है, डिस्ट्रैक्शन से बचना है। तो कुछ अरसे के लिए जो एक्स्ट्रा मुलाकातें हैं, जो एक्स्ट्रा लोगों से मिलना है, जो एक्स्ट्रा इंसान चीजें कर रहा है, उसको पीछे करना है ताकि अपना जो एक गोल है उसको अचीव कर सके। और ये अकली बात है, हर गोल को अचीव करने के लिए इंसान तवज्जो पैदा करता है। इसीलिए खानकाहों का कयाम किया गया, ये सालिकीन मशायख की सोहबत में आए और कुछ वक्त मशायख के पास गुजारे, और वो वक्त गोल ओरिएंटेड हो, उसका एक मकसद होता है, वो मुतय्यन होता है कि कुछ वक्त हर चीज से हट कट के अल्लाह की तरफ तवज्जो करे, और उस वक्त में इबादत के अंदर आदत बनना शुरू हो, गुनाहों से बचने की आदत शुरू हो, तवज्जो इलल्लाह की आदत बने। इन चीजों को हासिल करने के लिए हर चीज से हट कट के और इंसान अल्लाह की तरफ तवज्जो करता है। तो इख्तिलात माल अनाम ये कोई परमानेंट चीज नहीं है, ये जिंदगी भर की चीज है, ये कुछ वक्त की चीज है कि जब तक कि इंसान को थोड़ी इस्लाह नसीब हो जाए। और इख्तिलात माल अनाम का ये मतलब भी नहीं इंसान अपनी जो जिम्मेदारियां हैं उनसे ही बिल्कुल दस्तबरदार हो जाए, बल्कि इख्तिलात माल अनाम ये इंसान रुजू इलल्लाह की तरफ फोकस करने के लिए करता है कुछ वक्त मशायख की सोहबत में आके। अल्लाह ताला हमें ये नेमत नसीब फरमाए। ये जो हिदाया एकेडमी में हम पढ़ते हैं ये भी इख्तिलात माल अनाम की सूरत हाल है कि हफ्ते में चंद घंटे इंसान हर चीज से हट कट के और दीनी कुतुब की तरफ तवज्जो करता है, तो ये भी इख्तिलात माल अनाम की एक सूरत है। हो सकता है ये बेस्ट सूरत ना हो मगर एक कोई ना कोई सूरत ये जरूर बनती है। तो इसलिए जो तुलबा इस वक्त माशाल्लाह मौजूद है यहाँ पे उन सबको ये आज इसको शामदीद भी कहता है, और आज अभी थोड़ी देर में एग्जाम की अनाउंसमेंट भी है, तो मुख्तसर से हम दुआ करते हैं, इसके बाद फिर एग्जाम की अनाउंसमेंट इंशाल्लाह शुरू करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका इल्मन नाफिअ वअमलन मुतकब्बला ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. جزاكم الله. بس 2-4 منٹ کے لیے یہ آج ڈسکنیکٹ ہوگا اور پھر انشاءاللہ کنیکٹ کر کے اور پھر ریزلٹ کی طرف ہم جاتے ہیں انشاءاللہ. جزاک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام
السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم
وعلیکم
ورحمۃ
السلام
اللہ
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.